अति प्यारे ब्रह्मा बाबा और परम प्यारे शिव बाबा के बहुत बहुत स्नेही, बाबा के दिल तक तनशीन, बाबा के नैनों के नूर, ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार, आप सब भाई बहने भले पधारे। आज का दिन विशेष दिन है हम सब के लिए, जो मधुबन पधारे हैं, शांतिवन में पधारे हैं, अथवा टीवी के द्वारा अन्य साधनों के द्वारा सुन रहे हैं, सभी को आज अव्यक्ति दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। कोई भी दिन मनाया जाता है तो उसमें कोई विशेष लक्ष्य रहता है। गुजरात के भाई बहनों को तो बहुत खुशी है कि ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल स्थूल रूप में भी बहुत समीप रहे। सरला दीदी आपको सुनाएंगी, जानकी दादी भी सुनाएंगी कि कैसे बाबा गुजरात को, खासकर अहमदाबाद को, मधुबन का एक कमरा मानते थे। और आज भी ऐसे ही है, मधुबन में जब कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनने के लिए सबसे पहले किसको याद करते हैं? गुजरात को याद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भाई बहनों को भूल जाते हैं, ऐसे तो हर एक जोन का अपना पार्ट है, लेकिन इस बार विशेष 18 जनवरी पर सेवा का टर्न किसका है? गुजरात का है। आज का जो मुझे विषय बताया गया है, ब्रह्मा बाप की अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति कहें या संपूर्ण स्थिति कहें, इसके बारे में आपके सामने कुछ अनुभव ही रखेंगे। यूं तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन खास हरेक बाबा के बच्चे या बच्चियां जो भी ईश्वरी ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उनको अपने इस ज्ञानी और योगी जीवन के लक्ष्य का क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हमें अभ्यास करते करते कहां तक पहुंचना है, कैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम सबके सामने एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, मिसाल तो बहुत हैं। एक एक दादी का मिसाल है, मम्मा का मिसाल है, वरिष्ठ भ्राताएं जिनको पहले हम दादा कहते थे, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, विश्व रतन दादा, चंद्रास दादा, जगदीश भाई, रमेश भाई, ऐसे महान आत्माएं जो होकर के गए, तो सभी ने अपने अपने जीवन काल में बाप दादा की श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उसको लाने का पूरा उन्होंने पुरुषार्थ किया और ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए जो सबके लिए मिसाल बन गए। मातेश्वरी सरस्वती जो इस यज्ञ की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी और बाबा के ज्ञान से, ईश्वरी ज्ञान से उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रृंगारा था कि बाबा ने उनको यज्ञ माता बनाया और जैसा उनकी स्थिति के द्वारा महसूस होता था नाम भी वैसा ही उनको दिया, जगदम्बा सरस्वती। और सरस्वती जैसे मशहूर है, ज्ञान की देवी और उसके साथ साथ कलाओं की देवी भी है। मम्मा ने खुद अपने जीवन काल में एक तरफ जो कलाएं उनको उनके जीवन में उन्होंने सीखी थी, संगीत की कला, गीत की कला, डांस की कला, बहुत मशहूर थी, लेकिन बाबा को पहचानने के बाद पूरा तन मयता के साथ बाकी बातों से मन हटा के मनुष्य से देवता बनने के लिए, अथवा यूं कहें कि श्री सरस्वती से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करने के लिए जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान दिया था, पूरा उसमें उन्होंने दिल व जान लगा दी और कभी कोई सोचता नहीं था। शरीर की आयु उनकी कोई बहुत नहीं थी, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने तक वो पहुंच गई और 1965 में अव्यक्त हो गई। उसके बाद ब्रह्मा बाबा का पाठ जो पहले बाप, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के रूप में था, उनके साथ साथ, पता नहीं आपने मुरली में कभी नोट किया हो, किया भी होगा, कि ब्रह्मा बाबा ने अपने रोल के बारे में कि ये बड़ी मां भी है। हाँ, ब्रह्मा, आप सुनेंगे किसी संत सन्यासी से तो वो ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं, पर ब्रह्मा तो बाबा हमेशा कहते थे, ये मम्मा की भी मम्मा है, बड़ी मां है ये। आज की मुरली आपने सुनी, साकार मुरली भी सुनी, अव्यक्त मुरली भी सुनी, इतनी गहराई की बातें बाबा ने सुनाई। अब सवाल उठता है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद क्या परिवर्तन आता गया। सबसे पहली बात, ईश्वरी ज्ञान की जो चरम सीमा है, बाबा ने अच्छी तरह से हम सब के सामने ज्ञान की प्रकाष्ठा की, ऐसा ज्ञान की गहराई में ले गए जिसको यूं कहें कि बीच बीच में बाबा जैसे कहते थे कि रिफाइननेस होती है, रिफाइन हो रहा है ज्ञान। कोई कोई बात बाबा कभी कहते थे, ये अभी समझाई नहीं है, अभी समझने की बाकी है, लेकिन आप देखेंगे 1965 के बाद जितनी भी मुरलियां चली हुई हैं, एक एक मुरली, ज्ञान मुरली, जैसे कि उसको कहा जाए स्टैंडर्डाइज्ड, एकदम स्टैंडर्ड की बन गई। आप पूरी मुरली पढ़ेंगे, बाई चांस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बिंदु कहीं लगाना गलती हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो परमात्मा के लेवल से ज्ञान है, हाईएस्ट, जिसके आगे कोई भी दूसरा ज्ञान, शास्त्रों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, वो मैच ही नहीं करेगा। इतनी उसके अंदर डेप्थ है, गहराई है, इतनी क्लैरिटी है और इतनी भव्यता है, इतनी ऊंचाई है। और जैसे कहा जाता है, नॉलेज इज पावर, उस ज्ञान के हर वाक्य में शक्ति भरी हुई है। मैं समझता हूं सभी भाई बहने इस बात में सहमत होंगे कि रोज जब मुरली पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं, सुनने से पहले या पढ़ने से पहले अपनी स्थिति क्या होती है मन की, और जैसे जैसे मुरली सुनते जाते हैं, मुरली पढ़ते जाते हैं, तो अंदर ही अंदर शक्ति जैसे भर रही हो, खजाना भर रहा हो, जो बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का आपको दे रहा हूं, वो फील होता है। सिर्फ पढ़ने मात्र नहीं होता है, सिर्फ सुनने और सुनाने मात्र नहीं होता है, लेकिन उसकी गहराई में जाते हैं तो इतना दिल को छूती हैं सारी बातें کہ بابا نے ہم بچوں کو جس کو کہیں کہ بالکل شاستروں کا تو گیان اتنا ہم لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے, اس کے لیے ادھیان کرنے کا اتنا کسی کے پاس سمے بھی نہیں ہوتا, لیکن اتنی سرلتا سے بابا نے گیان اچھی طرح سے ہم بچوں کو دیا, گہرائی سے دیا, اور پھر جنتا تک پہنچانے کے لیے بابا نے بہت بہت ایسے سادھن بھی نکلوائے تھے, چاہے وہ پردرشنیاں تھیں, بعد میں میلے کا روپ ہو گیا, لیکن بابا کا گیان کا پرچار اور پرسار جس کو کہا جائے ایسا دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے اور آج تک وہ ہو رہا ہے, کیونکہ سب سے ویلیویبل چیز ہے گیان. گیان نہیں تو کہا جاتا ہے گیان کے بنا منوش اندھکار میں ہے, جیسے گیان کی روشنی سے ایک اجالا جیسے من میں ہو جاتا ہے, راستہ صاف دکھتا ہے, اپنے لکش کو بالکل کلیئر سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ ایشوری گیان اتنا شریشٹھ گیان ہے جو اتنا اونچا لکش دیتا ہے کہ منش کو دیوتا بنا دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو بابا نے گیان کی گہرائیوں کی بات جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, جو آج کل بھی مرلیاں چل رہی ہیں وہ 1965 کے بعد کی ہیں. تو ایک طرف تو بابا نے گیان کی گہرائی کی طرف سبھی کا دھیان کھینچوایا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ایشوری جیون کا ہے سبھی جانتے ہیں, روز مرلی کے اندر اس پر بہت بابا تاکید کرتا ہے, دھیان کھینچواتا ہے. کون سا سبجیکٹ ہے وہ؟ یاد کی یاترا. یاد کی مہینتا کیا ہے, کس لیول تک جانا ہے, کیا اس سے پراپتی ہونے والی ہے, اس بات کو بابا نے بہت پیار سے سمجھا سمجھا کر کے پکا کروایا. لیکن جیسے کہا جاتا ہے دیکھنے سے سہج لگتا ہے, سینگ از بیلیونگ, ایسے انگلش میں بولتے ہیں کہ دیکھنے سے ہی وشواس ہوتا ہے. تو بابا, ہاں آج بابا کی خاص یاد کا دن ہے, تو بابا نے کیا ایسا کیا جو آج کے دن ہم ان کو یاد کر رہے ہیں؟ بابا نے وشیش روپ سے شیو بابا کے ساتھ کیسے من لگانا ہے, شیو بابا اور برہما بابا کے بیچ سے جو تھوڑا بہت بھی ڈسٹینس تھا وہ ختم کیسے کرنا ہے, جو تھوڑا سا ڈفرینس کبھی نظر آتا تھا, جو بابا کہتے تھے کہ جب شیو بابا اس تن میں آتا ہے تو آپ بچوں کو بابا درشتی دیتا ہے, نہیں تو بابا پرم دھام میں ہی رہتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے بابا نے اس بات کے اوپر زیادہ پہلے سوئم سے ایکسپیریمنٹ کیے. آپ دیکھیں گے کچھ ایک مرلیوں میں 8 گھنٹے کی بات کی ہوئی ہے بابا نے, 8 گھنٹے آرام کرو, 8 گھنٹے اپنی کاروبار کرو, اور باقی آٹھ گھنٹے جو ہیں اس کا لکش رکھنے کا کہ آٹھ گھنٹے بابا کی یاد میں جانا ہے. اس بات کو ہم لوگوں نے بہت نزدیک سے اچھی طرح دیکھا کہ بابا دن پرتی دن اتنا گہرائیوں میں, بابا کی یاد کی گہرائی میں اتنا کھو جاتے, جیسے کہ دونوں برہما بابا کی آتما اور شیو بابا, شیو بابا تو سدا ہی آتما روپ میں ہے, تو برہما بابا کی آتما اور پرم پتا پرماتما دونوں میں دھیرے 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 سمانتا آتی گئی. سمانتا کیسے معلوم پڑتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ سائلنس میں رہنے کا کس کا پارٹ ہے؟ سارے کلب کے اندر سب سے زیادہ پرم دھام میں سائلنس میں کون رہتا ہے؟ شیو بابا رہتے ہیں نا. تو شیو بابا سائلنس میں زیادہ رہتے ہیں, اس لیے سائلنس کی شکتی شیو بابا میں بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ سرو شکتیوان بن گیا. ان کے ساتھ من لگاتے لگاتے برہما بابا نے بھی اپنی ستھتی کو اتنا مہین, اتنا دیویہ اور اتنا مہان بنا دیا کہ ان کو پھر واچا میں زیادہ آنے کا من نہیں ہوتا تھا. جو پرانے بھائی بہنیں ہیں ساکار بابا کے سمے جو ایشوری سیواؤں میں ویست ہوتے تھے, تو ان کے من میں ایک اتکنٹھا رہتی تھی, سیوا کریں اور بابا کے پاس جا کر کے بابا کو سنائیں, بابا ہم نے یہ سیوا کی, ہم نے وہ سیوا کی. تو بابا سنتے تھے, پہلا ایک سمے تھا پورا پورا سماچار سنتے تھے, لیکن دھیرے دھیرے دیکھنے میں آتا گیا کہ بابا اپنے اس لکش کو سامنے زیادہ رکھ رہے تھے کہ مجھے آٹھ گھنٹہ شیو بابا کی سمرتی میں من کو لگانا ہے. اس کے کارن بابا کی سائلنس آگے سے آگے بڑھتی گئی, اتنے تک کہ بابا نندرا جیت بھی بنتے گئے. کسی سمے بھی بابا کو کوئی جا کر کے آواز دے گا تو بابا جاگرت ہوتا تھا, لیکن وشیش روپ سے دن کے ٹائم بھی صبح مرلی سنانا, کوئی پتر وغیرہ لکھوانے ہوں یشو دادی کو وہ لکھوا دینے یا لکھ دینے, اس کے بعد بابا پھر چاہے اپنے روم میں گدی پر بیٹھ کر کے اور چاہے باغیچے کی جھونپڑی میں بیٹھ کر کے ایسا سائلنس میں اتنی گہرائیوں میں چلے جاتے. اور آپ جانتے ہیں, سنا ہے آپ نے, جہاں کوئی یوگی تپسیا کرتے ہیں تو اس ستھان کا واتاورن, وہاں کا وائبریشن اس کے انوسار چارج ہو جاتا ہے. ایسے وایو منڈل میں کوئی بھی آتا ہے باہر سے تو وہ محسوس کرتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, بھائی بہنیں بھی باہر سے آتے ہیں جو ابھی گیان میں نہیں ہیں, جنہوں نے ابھی تک کورس بھی نہیں کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ شانتی ون میں آتے ہیں، مدھو ون میں آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اندر پاؤں رکھتے ہی، گیٹ سے اندر آتے ہی ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہاں کچھ وایو منڈل دنیا سے الگ ہے، کیونکہ یہاں ابھی بھی جیسے بابا کے سمے بابا سوئم اکیلے بھی میڈیٹیشن سارا دن کرتے، ایسے ہی آج کل کلاسز پہ کلاسز چلتی ہیں، میڈیٹیشن ہوتی رہتی ہے، گیان کی بات ہوتی رہتی ہے، تو وایو منڈل میں چینج آتی، لیکن اس سمے تو اتنے بھائی بہنیں نہیں تھے، تھوڑے تھے، جو تھوڑے تھے تو اوشیہ من میں ہوتا تھا بابا سے ویکتیگت جا کے ملیں، بابا کے ساتھ بات کریں، بابا سے آگے کے لیے اپنی انتی کے لیے گائیڈنس لیں، اور اگر کوئی اپنی بات سنانی ہو، گھر کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، تو وہ بھی بابا کو سنا کے بابا سے شریمت لیتے تھے۔ لیکن لاسٹ کے جو دو تین سال، میں دو تین سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مما کے بعد تھوڑا چینج، دیدی منموہنی آ کر کے مما کے ستھان پر پھر رہی تھی مدھوبن، اور پھر 1967 میں دادا وشو کشور طبیعت کے کارن ہاسپٹلائز تھے بامبے میں، ہر کشن داس ہاسپٹل میں سرجری ہوئی تھی ان کی، لیکن بہت جیسے ان کو ایک درد ہوتا تھا، نیند نہیں کر پاتے تھے رات کو، گولی لینے کے بعد بھی، انجیکشن لینے کے بعد بھی، بابا کو سماچار ملتا تھا تو بابا پھر خود کی نیند چھوڑ کر کے اور اپنے فرشتہ سوروپ سے اس آتما کو یوگ کا دان دیتے تھے۔ جس دن بابا رات کو نہیں آرام کریں گے اور سکاش دیں گے ان کو، تو اس دن دادا وشو کشور اچھی طرح ریسٹ کرتے تھے۔ دوسرے دن بابا خود اگر آرام کرتے تو پھر دادا کو درد ہوتا ہے۔ اس طرح کا کھیل یوں کہیں ایک ہفتے تک چلتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد اچانک وشو کشور دادا نے شریر چھوڑا۔ ان کے شریر چھوڑنے کے بعد بابا اور گہرائیوں میں جانے لگے۔ ہم لوگ جب بھی جا کے ملتے تھے تو پہلے کوئی سماچار سیوا کا یا سینٹر کا یا جو بابا نے کاروبار دی ہوئی ہوتی تھی اس کا کچھ سنانے کے لیے بیٹھتے تھے تو بابا پہلے بڑے دھیان سے لمبی بات سنتے تھے، پوری باتیں سنتے تھے اور کریکشن بھی دیتے تھے۔ لیکن دیکھا 67 آنورڈز، 67، 68، 69 کے تو تھوڑے ہی دن تھے، 18 دن، اس سمے بابا اپنے سمے کی ویلیو کو دیکھ رہے تھے کہ بابا کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بے حد کے सेवा में जाना चाहिए। और उनके लिए बेहद की सेवा क्या थी? एक तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं सबकी स्थिति ऊंची हो, उसके लिए बाबा सबको सकाश देने का पाठ कर रहे थे। उसके साथ में बाबा के सामने पांच तत्वों की भी बात आ जाती है कि पांच तत्वों को पावन बनाने के लिए भी सकाश देना है। और इसके साथ में सारे विश्व में जो बाबा के बच्चे अभी तक ज्ञान में नहीं आए हैं उनको इमर्ज करना, ऐसी एक यूं कहें कि कभी किसके ख्याल में नहीं आएगी कि ऐसी सेवाएं भी होती हैं। कैसे बाबा उस समय सारे विश्व के बच्चों को भी सामने अपने देख करके उनको भी दृष्टि देना, उनको भी सकाश देना है मुझे। और आप देखेंगे साकार मुरलियों में कहीं कहीं मेंशन्ड है, बच्चे आगे चल के देखेंगे विदेश से भी बच्चे आएंगे, वो भी आकर के अपना जो भाग्य है वो लेंगे। भिन्न भिन्न धर्मों के भी बच्चे आएंगे, वो आकर के शांति का विशेष अभ्यास करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, शांति का अनुभव करेंगे। उसके साथ में खास धर्म पिताएं जो जिन्होंने भिन्न भिन्न समय पर आकर के धर्म स्थापना की है, अभी वो अपना पुनर्जन्म लेते लेते इस समय साधारण रूप में हैं, लेकिन फिर से अपने में वो शक्ति भरने के लिए, शिव बाबा का परिचय प्राप्त करने के लिए वो बच्चे भी यहां आकर के अपने में शक्ति भरेंगे। ज्ञान अपने धर्म का रखेंगे लेकिन शक्ति अपने में भरने के लिए ये याद का, जिसको हम लोग सहज राजयोग कहते हैं, इसका वो आकर के सीखेंगे। इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से बाबा उन आत्माओं को भी अपने सामने इमर्ज करते और उनको सकाश देते थे। और इस तरह से बाबा का अधिक से अधिक समय, जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई एक लक्ष्य लेकर के बैठते हैं, उसी में खोए रहते हैं, उसी में ही पूरा टाइम उनका चला जाता है, और फिर कोई नई चीज ऐसी निकालते हैं। तो मैंने देखा कि बाबा बहुत समय, जब उनको एकांत का समय मिल जाता, बच्चों से मिलने का नहीं होगा, तो वो याद में खो जाते थे। और ऐसा बाबा के साथ मन लगा के ऊंचाइयों में चले जाते और उस समय का जो वायुमंडल बनता बाबा के कुटिया में या बाबा के रूम में या वैसे ही मधुबन में, बहुत अव्यक्त, बहुत शक्तिशाली और बहुत आत्मा को सुख देने वाला बनता। कभी कभी भाई बहने जाकर के, हाँ, मेरे साथ बाबा के पास जाकर के बैठते, बाबा खोए होंगे उस समय अपने याद में, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम जाकर के पास में बैठ जाते थे एक साइड पे। कुछ समय के बाद बाबा जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे आ करके बड़े प्यार से ऐसे अपना टर्न करके इधर या इधर दृष्टि देंगे, और वो दृष्टि देते देते बाबा हम लोगों को अव्यक्त रूप में उड़ा देते थे। काफी समय फिर दृष्टि देते देते उसके बाद पूछेंगे, आओ बच्चे कुछ पूछना है। ये एक अनुभव की बात है कि वो सब जो कुछ पूछना होता था उस समय याद नहीं आता था। बाबा की सकाश की इतनी शक्ति थी कि वो सब भूल जाता था। क्या जवाब दें उस समय बाबा को? दिल तो यही होती थी बस बाबा से दृष्टि मिलती रहे, आत्मा भरपूर होती रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम अपनी सुनाएंगे भी तो ये इसकी सेवा की उसकी सेवा की, यहां गए वहां गए, लेकिन जो उस समय बाबा मेरे को दे रहा है वो तो उन बातों में नहीं है। बाबा की दृष्टि में वो शक्ति थी, बाबा के नैनों में वो प्यार था, तो दिल होती थी बस बाबा के प्यार का प्याला पीते रहें और बाबा की दृष्टि से शक्ति अपने में भरते रहें, बाप समान बनने का एक लक्ष्य अपने सामने क्लियर हो जाता था। अंदर यही आता था कि जितना बाबा ने अपने आप को ऐसा फरिश्ता बना लिया है, क्योंकि बाबा को स्थूल रूप में इतना हम लोग नहीं देखते थे जितना उनको फरिश्ता स्वरूप में देखते थे। तो कई भाई बहने ये भी सुनाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता था कि बाबा सामने है और कभी देखते देखते जैसे वहां से गुम हो जाता है, ऐसे भी अनुभव होते थे। लेकिन यही कहूंगा कि बाबा ने हम बच्चों के सामने स्वयं का एक बहुत शक्तिशाली मिसाल कायम किया कि मनुष्य जीवन किसके लिए है, इसका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है अगर, और लक्ष्य क्लियर है, और उसके लिए जो योग्य और यथार्थ अभ्यास है उस पर पूरा अटेंशन है, तो धीरे 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 उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों के लिए कई बातें कही हुई हैं, याद की यात्रा में क्या क्या फायदे हैं, और आज की मुरली में भी अव्यक्त मुरली में एक बात कही, कई सारी बातें आती हैं, कोई समस्याएं भी आती हैं, कोई विघ्न भी आते हैं, लेकिन अगर आप अपनी याद की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी स्थिति उपराम हो जाती है, आप उसकी चिंता नहीं करते। फिर बाबा के साथ मन लगा हुआ है, कोई भी बात आती है, कोई विघ्न आता है, उससे पार हो जाते हैं, स्वतः ही पार हो जाते हैं, बहुत नाम मात्र थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता। तो ये बात प्रैक्टिकल में देखते थे और बाबा को समय की कितनी वैल्यू थी कि समय बहुत थोड़ा है। आज भी मुरली में था, सुना तो है हम सभी ने, कितना समय है, कई सारी बातें बताई अव्यक्त मुरली में, कितने खंड रह जाएंगे? भारत खंड के लिए बाबा ने कहा अगर भारत खंड रहेगा बाकी सब किस रूप में चेंज हो जाएंगे, पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे, पर किसके लिए बनेंगे, किसके लिए? जो पास्ट को भस्म करेंगे योग अग्नि से, योग अग्नि से पास्ट को भस्म करेंगे, योग बल इतना इकट्ठा करेंगे जो प्रकृति जीत बन जाएंगे, और इसके साथ साथ ऐसा श्रेष्ठ कर्म, अनेकों का कल्याण करने का कर्म जो है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अवश्य ही वो अगले जन्म में कहाँ होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देख करके बहुत खुश होते थे कि कल मैं जाकर के ऐसा बनने वाला हूं, तो ऐसे ही बाबा के बच्चे भी जब इस तरह से पुरुषार्थ, जिगरी पुरुषार्थ करते हैं, तो अवश्य ये ख्याल चलेगा हम भी बाबा के साथ श्री कृष्ण या श्री राधे के स्वरूप में जाकर के पहुंचेंगे। हम भी उनके साथ जाकर के जो मशहूर है श्री कृष्ण लीला, वो लीलाएं नहीं जो हम सुनते हैं, लेकिन राधे कृष्ण की रास मशहूर है। तो राधे कृष्ण अकेले तो रास करते नहीं हैं, भक्तों ने क्या किया ये बताने के लिए कि नहीं हम सभी भी वहां होंगे, तो एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखा दिया। आठ को दिखाते हैं, उसमें आठ कृष्ण। अब सवाल उठता है कि आठ कृष्ण एक साथ होंगे क्या? लेकिन एक जैसे कृष्ण, जैसे इस लेवल तक पहुंचने वाले जो उस समय श्री कृष्ण के साथ, श्री राधे के साथ रासलीला में शामिल हो सकेंगे। आपसे पूछता हूं, तैयार हैं आप होने के लिए? चलेंगे? हाँ, थोड़े से बीच में हैं, बाकी आगे वाले तो कहते अभी नहीं। हाँ, जो चलने के लिए तैयार है हाथ खड़ा करो मेरे साथ, फिर तो बहुत बहुत बड़े हो, बड़ा स्थान बनाना पड़ेगा ताकि सभी रास अच्छी तरह से कर सके। तो बाबा ने देखो, एक तरफ पुरानी दुनिया जो है जिसमें कोई रस नहीं है, उससे वैराग दिलाया कि बच्चे इसमें कोई रस नहीं है, जो कुछ देखने में आता है ये बाहर का शो जो है, ये मायावी शो है, इसमें कोई आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अल्पकाल का सुख मिलेगा और बहुत काल का दुख मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े स्थान बनते हैं, और वहां पर कभी लिफ्ट बंद हो गई, फिर इतने मार चढ़ना कैसे, कभी लॉक ऐसा लग गया बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, वो तो अखबारों में आप पढ़ते हैं। लेकिन बात है सारी कि बाबा के साथ, हाँ बाबा कह रहा हूं, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के जैसा बनना, अर्थात फिर उसके बाद कर्मातीत बन के परमधाम में जाना, और फिर आके यहां श्री कृष्ण के साथ लीला में शामिल होना। श्री कृष्ण लीला का नाम इसीलिए हुआ कि नंबर वन वो है। ऐसे तो जो साथ में होंगे वो भी तो लीला में होंगे, लेकिन नंबर वन, तो नंबर वन होने के लिए क्या पुरुषार्थ किया बाबा ने, वो हम प्रैक्टिकल देखते रहे कि पुरानी दुनिया से, पुराने रस्मों रिवाज से, पुरानी आदतों से जिगरी वैराग, उसके लिए कोई थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं, और फिर इसके साथ में बहुत बहुत दिव्यता से बाबा प्यार से ऐसे हाथ दे करके धीरे धीरे, हाँ थोड़ा راس بھی کراتے تھے، یہ بھی تھا. ایسا نہیں کہ بالکل روکھا پن آ گیا، سوکھا پن آ گیا، وہ بھی نہیں تھا. اس سمے ایسے انبھو کرا دیتے تھے جیسے کہ ہم بچے کلیوگ میں نہیں ہیں. سنگم کا بھی اس سمے یاد نہیں آتا ہے جیسے ہم بابا کے ساتھ ستیوگ میں اس سمے کے ٹائم پر ہیں، اور اس کانشیسنیس میں بابا کے ساتھ. اب بابا شبد وہاں تو نہیں ہوگا نا، پھر تو سری کرشن کے ساتھ راز کر رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی بڑے بھائی بابا کو دیکھتے اور ساکشاتکار ہو جاتا بابا کا، جیسے سری کرشن سامنے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تھوڑا چھوٹے روپ میں دیکھتے تھے تو جا کے اٹھا کر کے دوسرے لوگ جو آس پاس ہوں گے کہیں گے بھائی کہیں گرا نہ دے، لیکن نہیں، وہ اپنے نشے میں، ایشوری نشے میں اس سمے بابا کو ایسے اٹھا لیتے. تو بابا نے جیسے لاسٹ میں سری کرشن کو سامنے دیکھتے ہوئے بہت خوشی سے ایکسپریس کیا اپنے آپ کو کہ کل میں جا کر کے ایسا بن جاؤں گا، اور پھر ودائی بھی بچوں سے کیسے لی. ودائی لی، کون سے شبد ہیں؟ بھائی ایسا بننے کے لیے نراکاری، نروکاری، نرنکاری. تو اس کا پازیٹو سائڈ کیا ہے؟ سرو گن سمپن، سولہ کلا سمپورن، سمپورن نروکاری، مریادا پرشوتم، اہنسا پرمودر. ایسا بن جائیں ہم تو نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. وہ کتنے تک ہونی چاہیے وہ بھی ایک دم چرم سیما تک بابا نے بتائی اور پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو آج کا دن اویکتی دیوس کہنے میں آتا ہے، بابا اویکت ہوئے، لیکن اس کو بابا نے اور بھی نام دیے ہیں، سمپنتا دیوس، سمپن بنے بابا، سمپورنتا دیوس، وردانی دیوس، جو بھی نام دیجئے آپ. اب اپنے کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فالو فادر کرنا ہے. فالو کریں گے تو بابا کے ساتھ چلیں گے، اور فالو نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے پھر؟ وہ نہیں کہنا ہے، اچھا نہیں لگے گا. بابا کے ساتھ چل کر کے نئے اپنے راج میں راج کریں گے، راج بھی کریں گے، راس بھی کریں گے. تو بابا کو فالو کرنا ہے تو بابا کی طرح ہر ایک سبجیکٹ میں نمبر ون جانا ہے. جیسے پہلے گیان کی بات سنائی، یاد کی بات سنائی، پھر دیوی گنوں کی دھارنا کی بات. اگر دیوی گنوں میں سے کوئی ایک گن بھی کمی ہوگی، سرو گن سمپن نہیں ہوں گے، تو بھی تو میچ نہیں کریں گے نا وہاں. اس کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے، اپنے کو دیکھنا ہے میرے اندر کوئی اوگن تو نہیں ہے ابھی تک. اگر ہے تو 18 جنوری سب سے شبھ دن ہے، آج کے دن اس کو الوداع کر دو. کئی بار وہ بہنیں پروگرام رکھتی ہیں الوداع، کیا الوداع تناؤ. تو ابھی یہاں تو تناؤ کی بات ہی نہیں ہے نا، ہے کسی کو تناؤ ابھی؟ یہاں تو خوشی خوشی ہے بھائی، آپس میں ملتے ہیں، اوم شانتی اوم شانتی یہی کہتے ہیں. दुनिया में है तनाव, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको ज्ञान देने के लिए वो प्रोग्राम रखने पड़ते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को, जो बने हैं बच्चे, बने ही नहीं है, जिन्होंने बाबा को देखा है, बाबा से मिले हैं, बाबा को पाया है, हाँ वो गीत है ना अपना एक बना हुआ, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला। लेकिन उसके साथ जोड़ दीजिए, कितना मीठा कितना प्यारा ब्रह्मा बाबा। तो अभी थोड़ा टाइम, 4 मिनट बाकी है मेरे क्लास के लिए, तो 4 मिनट में क्या करेंगे, क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते 4 मिनट में। थोड़ा सीधे बैठ जाएं सभी। भाई अच्छा सा गीत बजाओ, अभी यही बजा दो, हमने देखा हमने पाया, यही बाबा का बहुत फेवरेट गीत था, ये सबसे पहला गीत अपना रिकॉर्ड किया हुआ 1966 का है वो, लेकिन सबको बहुत पसंद आता था। और साकार बाबा ने इस गीत की बड़ी महिमा की थी कि बच्चों ने अपने अनुभव का गीत जो है वो बनाया है। बहुत बड़े प्रोग्राम में बॉम्बे में ये गीत बजा था, अनेक भाई बहने 600-700 थे, सब ने उस समय जैसे शिव बाबा का साक्षात्कार किया था। जी तो चलो बाबा के पास, परम धाम में नहीं जाना, अभी कहाँ जाना है, ब्रह्मा बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में बहुत अच्छी तरह से बाबा से दृष्टि लेना और बाबा से गले मिलना, भूल नहीं जाना, दृष्टि लेना, गले मिलना और बाबा से वरदान लेकर के आना। मेरे से कई बार बोलते हैं कोई वरदान दीजिए, मैं कहता हूँ वरदान तो बाबा ने बहुत दे दिए हैं, अभी और कितने वरदान मैं कहाँ से लाऊंगा, बाबा का दिया हुआ इतने वरदान है तो मैं कौन से वरदान नए दूंगा, इससे तो अच्छा है खुद ही अपना वरदान आप लेकर के आओ आज। जी
कितना मी प्यारे ब्रह्मा बाबा आँखों के सामने से आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आँखों के सामने से आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया, कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया, कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आँखों के सामने थे आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करने ले चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करने ले चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आँखों के सामने से आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। बच्चों को प्रत्यक्ष करने ले दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने ले दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आँखों के सामने से आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा। ओम शांति।